नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं दीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम से पाठ अष्टम स्कंध अध्याय 3 गजेंद्र की समर्पण स्तुति। इस अध्याय के आज 5 नंबर श्लोक है। कालेन पञ्चत्वं मीतेषु कृत्स्नेष लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तत् आसीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे अभिविराजते विभुः। शब्दार्थ कालेन कालांतर में लाखों वर्ष बाद पंचत्वम जब प्रत्येक मायावी वस्तु विनष्ट हो जाती है इतेषु सारे विकार कृष्णस्य इस दृश्य जगत के भीतर की प्रत्येक वस्तु सहित लोकेषु सारे लोकों में या इनमें स्थित हर वस्तु में पालेषु ब्रह्मा जैसे पालनकर्ताओं में च भी सर्व हेतुषु सारे कारणों में तमः महानंदका तदा तब आसित था गहनम अत्यंत घना गभीरम अत्यंत गहरा यह जो भगवान तस्य इस अंधकार पूर्ण स्थिति के पारे इसके अतिरिक्त अभी विराजते स्थित है या चमकता है विभु परमेश्वर। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद कालक्रम से जब लोगों तथा अनेक निर्देशकों एवं पालकों समेत ब्रह्मांड के सारे कार्य कारण का संहार हो जाता है तो गहन अंधकार की स्थिति आती है, किंतु इस अंधकार के ऊपर भगवान रहता है। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। कृपया दोहराइए। कालक्रम से जब लोगों तथा उनके निर्देशकों एवं पालकों समेत ब्रह्मांड के सारे कार्यकारणों का संहार हो जाता है तो गहन अंधकार की स्थिति आती है, किंतु इस अंधकार के ऊपर भगवान रहता है। मैं उनके चरण कमल की शरण ग्रहण करता हूँ। तात्पर्य वैदिक मंत्रों से हमें पता चलता है कि भगवान सौ के ऊपर है, वे ब्रह्मा तथा शिव समेत समस्त देवताओं से ऊपर सर्वश्रेष्ठ है, ये परम नियंता है। जब उनकी शक्ति से हर वस्तु अदृश्य हो जाते हैं तो विराट जगत में घना अंधकार छाया जाता है, किंतु भगवान सूर्य प्रकाश है, जैसे कि वैदिक मंत्र में पुष्टि हुई है, आदित्य वर्णन तमसः परस्तात। हमारा दैनिक अनुभव है कि जब हम इस धरती पर रात्रि के अंधकार में होते हैं तो सूर्य आकाश में कहीं न कहीं सदैव चमकता रहता है। इसी प्रकार भगवान परम सूर्य की भांति सदैव चमकते रहते हैं। तब भी जब कालक्रम से समग्र विराट जगत विनष्ट हो जाता है, ओम अज्ञानाति मिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चतुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदानयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। नमो महाबलान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कालेन पंचत्वम् इतेषु कृत्स्नासु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तद् आसीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे अभिविराजते विभुं। कालक्रम से जब लोगों तथा उनके निर्देशकों एवं पालकों समेत ब्रह्मांड के सारे कार्यकारणों का संहार हो जाता है तो गहन अंधकार की स्थिति आती है, किंतु इस अंधकार के ऊपर भगवान रहते हैं। मैं उनके चरण कमल के शरण ग्रहण करता हूं। तो इस अध्याय में गजेंद्र की समर्पण की स्तुति वर्णन की जा रही है। पहले से आप श्रवण करके आ रहे हैं कि ये जो गजेंद्र है ये कोई साधारण हाथी नहीं, गज इंद्र अर्थात हाथियों के राजा है, जैसे इंद्र देवताओं के राजा, तो ये हाथियों की राजा था गज इंद्र, गजेंद्र, तो हाथियों की राजा सब है। कितनी बल था उस हाथी के पास है? कितना शक्ति था? कोई साधारण साधारण हाथी की जैसे जितना शक्ति होता है, इसका इतनी शक्ति था नहीं। ये गजेंद्र राजाओं के हाथी ही होने, और कोई ऑर्डिनरी हाथी नहीं था। जैसे भीम के पास कितने बल था, तो मनुष्य के पास ये इतना बड़ा हो सकता था हाथी के, पर वो तो हाथी के शरीर में ही इतने विशाल शरीर में है, तो उसके पास भी लगभग 10,000 हाथी का बल था। किसके पास? गजेंद्र के पास। और ये कोई ऐसा ही, फिर इसकी भी प्राचीन इतिहास था कैसे वो गजेंद्र बना। वो पूर्व जन्मों में भी कौन थे, कौन से इंद्रदिव्य जो जगन्नाथ जी को प्रकट किए थे हैं? राजा थे और उनके नाम भी क्या था, इंद्रद्युम्न, इंद्रद्युम्न पर राजा उनके नाम भी था। और लेकिन ये कैसे गजेंद्र बन गए, राजा थे तो मनुष्य जोनी में थे, कैसे हाथी बन गए? सुने ना, किसके किसके अभिशाप, आप लोग सुन के आए प्रश्न सुन, किसके अभिशाप था? अगस्त्य मुनि के अभिशाप था। इसलिए अभिशाप दिए अगस्त्य मुनि, क्योंकि भगवान के पूजन में इतने तल्लीन थे, अगस्त्य मुनि उनके दर्जे पर आ गए, उनको पता ही नहीं लगा, उनको स्वागत नहीं कर पाए। इसलिए कोई विग्रह की अर्चना कर रहा है पुजारी, लेकिन फिर भी कोई भागवत आ गया, वैष्णव कोई सामने आए तो उसको क्या करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। कोई विशेष वैष्णव है तो उसको कोई तुरंत स्वागत करना है कि थोड़ा सा इनको हंसते हुए बातचीत एक पद कुछ कहें, और एक फूल भी भगवान के महाप्रसाद एक हाथ में दे दे, महाप्रसाद एक फूल एक दे दे, माला दे दे, फिर जाकर अपने सेवा में करना, सेवा लगना है। तो ऐसा ही हुआ था कृष्णदास कविराज के घर में जो पधारे थे, कौन, मीनकेतन, मीनकेतन रामदास जी पधारे थे। तो ये गुणार्णव मिश्र पुजारी अपना आरती कर रहा था, लेकिन ध्यान नहीं दिया, ये चक्र तो कहे कि हैं, कहे कि तो हाँ थोड़ा तो गुस्से हुए, कहे कि दूसरा कौन रोमहर्षण सोता आ गया इधर, बलराम को देखकर जैसे उन्होंने समझा नहीं कुछ, उनको सम्मान नहीं दिया, जब करीब पुजारी भी देख रहा है खाली घंटी हिला रहा, लेकिन वैष्णव को देखकर सम्मान देना नहीं जानता है। कि मीनकेतन रामदास भी नित्य सिद्ध गौर परिकर थे, नित्यानंद के परिकर थे, द्वादश गोपाल में, गोपाल में से एक गोपाल थे, तो ऐसे ही कहे थे वो भी। तो इसलिए हम वैष्णव को जो देखेंगे तो उनको आदर करना चाहिए, ये आदर नहीं देने के कारण पूर्व जन्म में अवश्य की स्थिति ऐसे ही नहीं था, पर समाधिस्थित थे भगवान के अर्चन में, लेकिन फिर भी उन्होंने अभिशाप दे दिया। अगस्त्य मुनि भी बहुत शक्तिशाली है, कभी कभी भगवान ऐसे करते हैं, अपने भक्तों के से अभिशाप दिला देते हैं किसी के माध्यम से, जैसे महाराज चित्रकेतु को भी अभिशाप दे दिया, कौन, पार्वती ने। लेकिन ऐसे ही जो वैष्णव के द्वारा कोई अभिशाप प्राप्त होता है उनका वो अहित नहीं होता, बरम उसकी उनकी हित होता, हम उसको समझ नहीं पाते प्रैक्टिकल। नारद मुनि ने अभिशाप दे दिया किसको, नल कुबेर, उनकी अहित नहीं होता, उसमें हित होता है। इस प्रकार गजेंद्र हाथी की जोनी में निज राजा के रूप में रहे थे, और कई जन्म जन्मांतर से भोग विलास में लगे रहते थे, लेकिन इनको जब हाथी का जोनी मिल गया तो एक ही जन्म में ही उद्धार हो गया। भगवान जैसे वृत्रासुर का भी इस प्रकार, महाराज चित्रकेतु एक ही जन्म बस वृत्रासुर बने, फिर उद्धार हो गया। कभी कभी भगवान अपने सेवकों को जब जल्दी से जल्दी अपने धाम में लेना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ माध्यम ढूंढ लेते हैं, लेकिन फिर भी उसके माध्यम से हमको भी कई शिक्षा भी प्राप्त होता है। तो इसलिए अगस्त मुनि के अभिशाप से महाराज इंद्रद्युम्न हाथी की जोनी में, हस्ती की जोनी में जन्म लिए थे, लेकिन वो जैसे मनुष्य के राजा थे, ये भी हाथी के राजा के रूप में आए हैं। लेकिन जो ग्रह उनको पैर पकड़ लिया था, किसके लिए स्तुति कर रहे हैं गजेंद्र, किसके लिए स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि पैर को कौन पकड़ा है, ग्रह क्रोकोडाइल ने पकड़ा हुआ है, मगर ने पकड़ के रखा, वो भी कोई साधारण है मगर नहीं था, कौन था, हू नाम की गंधर्व था, और देवल मुनि के पैर को पकड़ के पकड़ लिया है, मैंने वो डुबकी और मजाक कर रहा था अप्सरा के साथ है, डूब डूब के अप्सरा पैर को पकड़े खींचता था, लेकिन काला हूं तो वहां पर देवल मुनि भी स्नान कर रहे थे, देवल मुनि स्नान कर तो ये डुबकी लगी उनके पैर को पकड़ लिया, किनके पैर को, देवल मुनि की है। इसी तरह देवल व्यास इनसे नाम महान ऋषि, उनके नाम भगवान ने गीता में कहा गया है, असल में अर्जुन ने कह रहे हैं असित देवल अभ्यास, ये सब ये घोषणा की कि आप परम भगवान हो कृष्ण, ये देवल मुनि के पैर पकड़ लिया तो क्या करें, वो बेचारे स्नान करके तर्पण कर रहे हैं उनको पैर पकड़ लें तब खींच लिया, तो फिर उनके मुख से निकाल गया वचन क्या बनो है, मगर बन गया जैसे पैर खींचने की तुम लोग बड़ा याद कह सकते हैं, पानी में रहो पानी में डूब के रहो हमेशा पैर खींचते रहो लोगों के, इसलिए ऐसा ही हम यदि इसी प्रकार भी जो राधा कुंड में जाएगी ज्यादा डुबकी लगाते रहेंगे है? और वैष्णव को ठीक से सम्मान नहीं कर पाएंगे, गुरु आदेश को उल्लंघन करें तो क्या बनेगा, नहीं यहां मगर नहीं बनेगा, क्या बनेगा राधा कुंड की, फिर राधा कुंड में क्या बन जाएगा, कुछ बन के रहेगा राधा कुंड के, कोई भी हानि कोई कुछ बन के रहना चाहता राधा कुंड में, चलो ये हु गंधर्व फिर वो क्या बन गया है, मगर बन गया, लेकिन उसका आशीर्वाद हुआ कि मैंने अभिशाप हुआ, भगवान के उसको आके उद्धार करेंगे ना, अभी भगवान ने क्या ऐसे नहीं कि केवल गजेंद्र को उद्धार किया उसको छोड़ दिया, उसको भी मारे तो वो भी उसी भी उसका भी उद्धार हुआ है, उस ग्रह के बाद वो मगर का भी उद्धार हुआ, इसलिए गजेंद्र ने गजेंद्र को पैर को जब कौन पकड़ा था, मैं सारा डिटेल कॉले से कहानी इतने कहने के टाइम नहीं, तो उन्होंने जब पकड़ा था उनके पैर को हस्ती का गजेंद्र के पैर को, गजेंद्र ने असहाय होकर कई सालों तक तो, यही नहीं कि तुरंत पकड़ा और तुरंत स्तुति के बारे में आरम्भ कर दिया था, नहीं कई सालों तक तो दोनों में संघर्ष चल रहा था, अंत में इनकी पूर्व सुकृति के बल पर होने के कारण उनको याद आ गया, पहले जन्म में जो महाराज इंद्रदमी के रूप में कुछ भगवान की स्तुतियां को याद किए थे, तो उन स्तुतियां इनको फिर स्मरण होने लगा भगवान की कृपा से, स्वल्पअप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतभयात्, थोड़े से भी कोई भक्ति किया उसे नष्ट नहीं होने वाला है, भगवान अंतकरण में अंदर अंदर से बैठे हुए हैं, सहायता करते अपने भक्तों, जो थोड़े से भी भक्ति किया, इसलिए भगवान ने कह दी मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम, मेरे से ही स्मृति विस्मृति ज्ञान सब आता है, क्योंकि मैं सर्वस्व चाहूं हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में बैठा हूं, इसलिए अंतकरण से भगवान ने इसको स्मरण दिलाए तभी तो स्मरण हुआ है, तो उसको स्मरण हो गया पूर्व जन्म के जो स्तुतियां सीखा था राजा के रूप में, जो भगवान को स्तुति कर रहा था, तो भगवान ने तो भगवत कृपा से तो उसको याद होने लगा, तभी तो उन्हीं स्तुतियों को वो दोहराते गए, कौन गजेंद्र ने जिन स्तुतियों को पूर्व जन्म में राजा इंद्रदमन के रूप में जिन स्तुतियों में भगवान को प्रार्थना करते थे उन स्तुतियों पर उनको याद होने लगा, इसलिए उन्होंने भगवान की स्तुति कहने गाने लगे विपद में ग्रस्त होकर है। कभी कभी हम कहते कि चार प्रकार के लोग जो भगवान की शरण में आते हैं, चतुर्विध भजते माम जना सुकृति अर्जुन आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चे भरत दर्शक, कभी कभी हम इनको आर्त भक्त में उदाहरण दे देते, किनकी गजेंद्र को विपदग्रस्त होकर भगवान को पुकार रहे थे, इसलिए गजेंद्र ने भी स्तुति कर रहे हैं भगवान की स्तुति की, भगवान को सहायता देखे कि कोई इनके सहारा देने वाला नहीं है, और उन्होंने मगर ने उनके पैर को पकड़कर खून चूस रहा है, खून तो चूस रहा है उसका शक्ति बढ़ रहा है किसका, और ये बेचारा खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा पानी के अंदर खड़े होकर, यदि वो 10,000 हाथी की बल था लेकिन आस्ते 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 उनके बल क्षीण होते जा रहा है, और उनके परिवार वर्ग सबका देख कर का पशु रो रहे थे चिल्ला रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते, दूसरे जो हस्ती नहीं आते जिनके साथ में जल क्रीड़ा करते थे, तो सो रहे हाथियाँ उनके परिवार वर्ग सब थे, हाथी हाथी होंगे उनके बच्चे भी होंगे, बच्चे भी बच्चे हैं सब थे है? संसार में भी ऐसा ही है, जब मृत्यु के समय आ जाएगा आपको कष्ट होगा आप जो तो आपको सब देख रहे केवल सो रोते होंगे सब, आप कुछ परिवार परिवार वर्ग संबंधी यहाँ सब रोते रहेंगे, कुछ कर पा कुछ करने वाले हैं, कुछ कर सकते ना, आपके साथ जाएंगे ना, कुछ करेंगे है? कौन सहारा होगा है? यदि भगवान को पुकारोगे वो सहारा होंगे, लेकिन ये संसारी व्यक्ति को किसको भी पुकारने कोई सहारा होने वाला? चलो अजामिल तो नाम रखा था भगवान के साथ, इसलिए वो पुकार लिया तो ठीक है, है? तो इसलिए संस्कृत में कहते कि भाई बच्चों के नाम भगवान के नाम के साथ रखो, कम से कम जिसको प्रेम होगा तो उसका नाम पुकारते पुकारते भगवान के है? नाम पुकार लेंगे। इसलिए गजेंद्र ने असहाय होकर भगवान को पुकारा, लेकिन किसी के नाम नहीं ले रहा था, खाली भगवान के गुणों को वर्णन कर रहा था, तो पार्टिकुलर किसको उद्देश्य करके है? अब देखेंगे। तो इसलिए कोई सारे देवता देख रहे थे, गजेंद्र से कष्ट भोग रहे, ब्रह्मा शिव इंद्र सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुर्ति किसको बुला रहा कुछ पता नहीं लग रहा है, तो कोई नहीं आ रहा था। आगे आगे स्तुति में फिर इशारा करें, जब जो स्तुति में जैसे उन्होंने कह रहा है कि इस श्लोक में गजेंद्र ने क्या कह रहे कि कालेन पंचत्वम इतेषु कृत्नासु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु, जो कि कालेन माने लाखों वर्ष, प्रभुपाद कहते लाखों वर्षों की बात, लाखों क्या होता है पंचत्वम, जब प्रत्येक जो मायावी वस्तु है सो विनाष्ट हो गई, पंचत्व है पंचत्व प्राप्ति हो गया इसको है, अर्थात पंचभूत से बना हुआ शरीर समाप्त हो गया है, कहते हैं पंचत्व प्राप्ति हो गया व्यक्ति, पंचत्व प्राप्ति माने वो जो पंचभूत से बना हुआ शरीर उसका समाप्त हो गया, उसकी मृत्यु हो गया है, शरीर का मृत्यु हो गया, आत्मा तो मरता नहीं। तो इसी प्रकार लाखों केवल केवल हमारे शरीर जो पांच भूत से बना हुआ ऐसा नहीं, संपूर्ण सृष्टि जो ब्रह्मा जी ने किया है, जो सृष्टि सेकेंडरी क्रिएशन, संपूर्ण जो सृष्टियां किससे बनाए ब्रह्मा जी ने, ये पांच भूत को आश्रय करके बनाया है, भूमि रप नल वायु खम इनके द्वारा सृष्टि की गई है। तो इसलिए लाखों लाखों अर्थात ब्रह्मा जी की परमायु के साथ कब ये सब समाप्त होते हैं, पंचभूत से बना हुआ जितने भी चीज ब्रह्मा जी की परमायु के साथ साथ सब विलीन हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। कालेन पंचत्वम इतेषु कृत्नासः, कृत्नासः अर्थात इस दृश्य जगत के भीतर के प्रत्येक वस्तु सहित, रूपा जी से अनुवाद करते कृत्नासः अर्थात इस दृश्य जगत के भीतर के प्रत्येक वस्तु के सहित है? सहित कौन है, न लोकेशु पालेशु च सर्वहेतुषु, जो इन लोगों को सृष्टि किया था, जिनको पालन कर रहा था, ये सभी समस्त सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। केवल लोगों की समाप्त नहीं होता, लोगों की जो सृष्टा है कौन, ब्रह्मा जी, इनकी भी समाप्ति हो जाती है। कहा तो जब लोगों तथा उनके निर्देशकों पालकों समेत ब्रह्मांड के सारे कार्यकारण संहार हो जाता है, कहते जब ये सब उसको संहार हो जाता है, तभी सर्वत्र अंधकार छाया जाता है, तमस तदाशित गहनं गभीरं, तभी सर्वत्र अंधकार छाया जाता है। लेकिन इस अंधकार के सर्वत्र छाया जाने पर भी यस्तस्य परे अभी विराजते विभु, ये अंधकार के परे भी जो जो रहते हैं, डायरेक्ट भगवान के नाम उच्चारण नहीं कर रहे, तो कहते ये अंधकार के परे भी जो परम सत्य जो रहता है, किंतु इसे अंधकार के ऊपर भगवान रहता है, यस्तस्य परे अभी विराजते विहो, अभी विराजते स्थित है या जो चमकता है, विभु अर्थात परमेश्वर, अब तो परमेश्वर फिर भी इस घोर अंधकार जो प्रलय के समय में ब्रह्मा जी की परमायु समाप्त होते ही सब कुछ जो विलीन हो जाता है, तो सभी कार्य कारण के साथ सब समाप्त हो जाते हैं, भौतिक ब्रह्मांड के जो सेकेंडरी क्रिएटर है ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने इनके अंदर जितने भी देवताएं सब डिपार्टमेंट हेड बने थे, ये समस्तों के साथ सभी समाप्त हो जाते हैं, जो संसार के उत्तर सर्वत्र अंधकार छाया रहता है, तभी उसी अंधकार के परे भी परमेश्वर रहते हैं, भगवान रहते हैं। प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, क्या लिखे प्रभुपाद ने तात्पर्य में, कैसा उदाहरण देखिए समझाए प्रभुपाद जी, हैं सूर्य, जैसे हम अभी सूर्य जैसे दिन है इंडिया में सूर्य दिखाई पड़ता है, तो बादल छाया हुआ दिखाई नहीं पड़ता, बादल छाया तो बादल के पीछे भी सूर्य है चलो छोड़, लेकिन कभी प्रभुपाद जी उदाहरण देखिए, जैसे हम अभी भारत में सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं, तो अभी अमेरिका में रात होता है वहां अंधकार दिखाई पड़ता है, अभी हमारा जो अंधकार हो जाएगा रात हो जाएगा, सर्वत्र अंधकार छाया जाने पर भी हम नहीं कह सकते कि सूर्य अब है नहीं है, लेकिन सूर्य फिर भी उसके अंधकार के परे दृश्य होते हैं, कहीं ना कहीं विराजमान रहते हैं। तो इसी प्रकार संपूर्ण जगत सारे ब्रह्मा जी के समेत, ब्रह्मा जी के समेत उनकी समस्त सृष्टि समाप्त हो जाती है, अंधकार में ही विलीन हो जाता है सब कुछ, तभी इसकी परे भी परमेश्वर रहते हैं, भगवान रहते हैं। इसी विष्णुनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की पर अपने टीका में कहते कि परमेश्वर से जगत उत्पादन आदि कारणम, जो कि का जो पंचभूत से बना हुआ है जो संसार, इसकी परे परमेश्वर रहते, लेकिन कैसे रहते उनके उन्होंने एक एनालॉजी देते हैं कि जस्मिन इदं जगत गृहें घटादिक मीव यतश्च कुंभकार दिव जेन चक्र दंडादिने एव यंत पिंड इव। वो कहते कि जैसे कोई कुंभकार अर्थात कुमार, कुमार जैसे क्या बनाता है, जो हांडी बनाता ना मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो उसको क्या करता है, वो सब मिट्टी लाता है फिर उसको है? और कई इसमें कुछ मिलाता होगा ना, मिला के फिर उसको जैसे चक्र के साथ जो क्या चलता है, क्या कोई देखा होगा आप लोग मिट्टी बर्तन कैसे बनाता है, जैसे चक्र दंडा दिने वो यह मृतपिंड मृतिका की जो पिंड है, जो अस्य विश्वस्य स्वयमेव सर्वाणि कारणानि भवति इति अर्थ। इसी प्रकार जैसे ये कुंभकार जैसे बनाता है, कुंभकार माने मिट्टी के बर्तन ऐसे मिट्टी के साथ ऐसे बनाता है, लेकिन फिर भी ये कुंभकार का भी ये शक्ति होता है कि सबको समाप्त कर सकता है, बनाया तो सबको तोड़ भी सकता है, उसको सब तोड़ने का भी उसके पास में शक्ति रहता है। ऐसे ही भगवान भी सबको सृष्टि करते हैं और सृष्टि करके अंत में ये सब समाप्त भी कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि कुंभकार, ये कुंभकार का जो बनाया हुआ था मिट्टी का बर्तन, उसके चक्र जो कुछ बनाया था, चक्र दंड बनाया था मिट्टी, अगर किसी कारण से उसको माने आया गया, इसको तोड़ के फेंक दिया, बस इसका अर्थ नहीं कुंभकार में समाप्त हो गया है। इसी प्रकार भगवान ने ऐसे ही कुंभकार के समान कुछ सृष्टि करते सृजन करते हैं, लेकिन ये सभी ब्रह्मा भी उन्हीं की उन्हीं से ही उद्भूत हुए। किससे किसे उद्भूत हुए? ब्रह्मा भगवान के नाभि से उत्पन्न हुए है? इसलिए जिन्होंने सभी को उद्भूत किया है, समग्र दृश्य जगत को, इन्होंने सभी को फिर समाप्त करने के बाद भी वो स्थित रहते हैं। जैसे कुंभकार सब कुछ समाप्त कर देगा, मैंने उसके जो चक्र दंड बाद जो मिट्टी या बर्तन बना सब कुछ किसी कारण समाप्त कर देगा, करने के बाद भी वो व्यक्ति रहता है। तो इसी प्रकार भगवान अपने समस्त सृष्टि को समाप्त करने पर भी विराजमान रहते हैं। इसलिए भागवत की चतुश्लोकी की पहला श्लोक ही कहता, क्या कहता, अहम एवास्य व्याग्रे नान्यत यत सत असत पराम पश्चात अहम यताश्च जो वशिष्यत सोऽस्मि अहम्। भगवान कहते दूसरे अध्याय के नव ने दूसरे स्कंद के नवम अध्याय के 33 नंबर श्लोक में, जो कि चतुर्श्लोकी भागवत के पहला श्लोक में कहते कि जब कुछ भी नहीं था, सत असत किसी के भी सृष्टि नहीं हुआ था, इसके परे पहले मैं था, तथा जो कि भौतिक जगत कुछ भी नहीं था, सभी के परे तभी भी मैं विराजमान था, जो समस्त सब कुछ फिर समाप्त हो जाती है तो उसके परे भी मैं ही रहता। अहम एवा सेवाग्रे नान्यत यत सत असत पराम पश्चात अहम यतताश्च जो वशिष्यत सोऽस्मि अहम्। सब कुछ समाप्त होने के बाद भी जो रहता, अंतिम जो वस्तु रहता, वो भी मैं ही हूं। इसलिए भगवान की स्थिति के बारे में गजेंद्र ने स्तुति के माध्यम से बताता कि भगवान कैसे हैं, ये समस्त दृश्य जगत की परे हैं, केवल जगत की परे नहीं, ये जगत की जो सृष्टि करने वाले हैं और इसको जो सब भिन्न 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 डिपार्टमेंट हेड बनकर जो इनको सब पालन भी करते हैं देवताएं सब, ये समस्त ब्रह्मा समेत समस्त देवताओं की समेत इनकी सृष्टि सब कुछ जब समाप्त हो जाती है फिर भी उस परमेश्वर विराजमान रहते हैं। तो उन परमेश्वर को मैं प्रार्थना करता हूं। कौन कह रहे? गजेंद्र, जो सब कुछ विनाश होने के बाद भी उस कुंभकार के समान जो सदा विद्यमान रहने वाले हैं, तो उन्हीं को मैं उन्हीं को प्रार्थना करता हूं। तो नित्य उस श्लोक में का 75 श्लोक में प्रभुपाद जी ने कोट करते हैं कि नित्य नित्यानाम चेतनास चेतनानाम एक बहुनाम जो विदधते कामा। क्योंकि श्लोक ऐसे ही है तो किसी नाम है नहीं, तो जो इम्पर्सनलिस्ट है जो शून्यवादी मायावादी वो इसको ऐसे इंटरप्रिटेशन कर लेंगे कि यहां पर कहां व्यक्ति के बारे में कहा गया, कोई भगवान कोई व्यक्ति नहीं होता है, भगवान कोई क्या निराकार निर्गुण निर्विशेष ज्योति स्वरूप है, वहीं से सब आता है, वो ज्योति ही रहता है अंत में, वो व्यक्ति नहीं कहेंगे। जो इसको कोई मायावादी इंटरप्रिटेशन करेगा वो कहेगा इस कहां कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, तो इसलिए वो ज्योति स्वरूप कौन, ज्योति स्वरूप ब्रह्म को निर्देशन करता है, परम सत्य जो है कि जो कि सब कुछ विलीन हो जाता है सब समाप्त होने के बाद, ये सब जगत मिथ्या और ब्रह्मन सत्य, ये जगत सारे विनाश हो जाने के बाद सब कुछ ध्वंस हो जाने के बाद केवल ज्योति स्वरूप ब्रह्म ही रहता है, बस ये कहेंगे। मायावती जो इसको इंटरप्रेशन करेंगे वैसे ही कहेंगे कि पर्टिकुलर किसके नाम नहीं लिया गया है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो इसको इंटरप्रेट करते तो कहते कि स्वयं भुगो कृष्ण रामादि रूपेण जो स्वयं भवती इति अर्थ है, कहते कि यहाँ जो वो अंतिम जो शब्द कहते विभु, विभु शब्द का अर्थ को निराकार निर्गुण निर्विशेष ज्योति स्वरूप है नहीं, परमेश्वर जो नाम ले रहे हैं इसका अर्थ परमेश्वर, विष्णु चक्र ठाकुर कहते कृष्ण रामादि रूपेण जो स्वयं भवती इति अर्थ, जो ये जो विभु शब्द का अर्थ है कि राम और कृष्ण आदि इनको भी समझा जा सकता है, इनको समझना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि नित्य नित्यानाम चेतनस चेतनानाम जो सदा विराजमान नित्य रहते हैं, दोनों ही नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं और उनके अंश स्वरूप ये जीवात्मा भी नित्य है, दोनों ही नित्य नित्य नित्यानाम नित्य नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, लेकिन फिर भी दोनों ही नित्य और दोनों ही चेतनशील होने पर भी वो परमेश्वर ऐसा ही वस्तु है बा वो जो चेतन वस्तु बा, तो उन्होंने अन्य समस्त की इच्छाओं को पूर्ति करने वाले हैं। जो विदधते कामना जो हमारा समस्त कामना को जो पूर्ण करने वाले हैं वो है परमेश्वर, इसलिए हम जैसे ही जो उनसे जो उद्भूत हुआ जो हमारे पास में ऐसे शरीर है हम सब कुछ इस कार्य करते, तो भगवान जो परम वस्तु जिन्होंने सभी की इच्छा को पूर्ण करते हैं तो उनका भी दिव्य शरीर है, वो भी एक व्यक्ति विशेष है, ये नहीं कि हम सब खा सकते हैं देख सकते हैं सुन सकते हैं और भगवान खा नहीं सकते कि देख नहीं सकते कि सुन नहीं सकते हैं, वो केवल बस ऐसा ही ज्योतिर्मय वस्तु, बस वो कोई व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए हम जानना चाहिए गजेंद्र जो स्तुति कर रहे हैं वो कि निराकार निर्गुण निर्विशेष ज्योति को प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, किसको प्रार्थना कर रहे हैं, एक व्यक्ति को प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर के बा विभु जो उच्चारण कर परमेश्वर कौन है नहीं गजेंद्र को पता है, क्योंकि पूर्वजन्मों में इंद्रदिम्न के रूप में वो भगवान की पूजन करते थे अर्चा विग्रहों की सेवा करते थे, तो इसलिए उनको पता है कि भगवान एक व्यक्ति विशेष है, भगवान कोई निराकार निर्गुण निर्विशेष ज्योति स्वरूप नहीं है, वो राम या कृष्ण जैसे एक व्यक्ति विशेष है, उन्हीं को गजेंद्र ने स्तुति कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में श्लोक में कहते कि किंतु भगवान सूर्य प्रकाश है, जैसे कि वैदिक मंत्र में पुष्टि की गई है कि आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्, हमारा दैनिक अनुभव है कि जब हम इस धरती पर रात्रि के अंधकार में होते हैं तो सूर्य आकाश में कहीं न कहीं सदैव चमकता रहता है, इसी प्रकार भगवान परम सूर्य की भांति सदैव चमकते रहते हैं, तब भी जब कालक्रम से समग्र विराट जगत विनष्ट हो जाता है हैं, तो विद्यमान रहते हैं। कौन? भगवान विद्यमान रहते हैं, लेकिन वो भगवान एक व्यक्ति भी सहसे गजेंद्र स्तुति कर रहा है, कोई निराकार निर्गुण ज्योति को स्तुति नहीं। ये भी हो सकता है देवता लोगों ने खाली देख रहे थे, सुनते नहीं थे, कहीं जानते कि ये जो स्तुति कर रहा है, कहता कि जो कर्ता के समान, कर्ता कारण, कर्ता कारण के साथ है? इनके निर्देशों को पालन को समेत जो ब्रह्मांड संपूर्ण रूप में कार्य कारण के साथ ही संहार हो जाता है, पर इसकी परे वो गहन अंधकार की स्थिति की परे भी जो रहने वाले जो परमेश्वर में इनको रक्षा के लिए प्रार्थना करता। तो ये लोग सब नाशवान है, जानते कि ये किसको प्रार्थना करता है, देवताओं को पता लगता था किसको प्रार्थना कर रहे हैं। वो परमेश्वर कोई है नहीं, ब्रह्मा परमेश्वर नहीं, बल्कि अन्य देवता नहीं परमेश्वर है, परमेश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। आगे स्तुति फिर वो वासुदेव कहकर जो फिर वो उद्देश्य करके भी वो मंत्र को उच्चारण करेगा, तो फिर भगवान ही आएंगे। स्वयं भगवान इतनी क्षिप्र गति से आएंगे, स्वयं गरुड़ का स्पीड भी क्या है, स्लो हो जाता है। गजेंद्र को रक्षा करने जो भगवान आते हैं, गरुड़ को भी छोड़ देते हैं, बोलते ये भी स्लो चल रहा है, गरुड़ को पिछाड़कर भक्ति सीधे चक्रस्थल आया, सीधे सीधे आकर ग्राहक तो उसको पानी से निकाल लिए, किसको, मगर पानी से निकाल कर इसको काटे इसके गर्दन को। तो इस प्रकार स्तुति से हम देख सकते कि गजेंद्र की ये उपाख्यान से हम देख सकते भगवान किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अवश्य भगवान के सभी भक्त हैं, है? उत्तम वैसे अधिकारी वैष्णव कहते कि जीव मात्र ही कृष्ण के दास है, सभी वैष्णव हैं, उत्तम वैष्णव सभी को वैष्णव देखता है, क्योंकि केहू माने केहू ना माने सभी तार दास, जेहू ना माने अपना गुणे से ही जाए नाश, जो नहीं मानता उसका नाश होता है, लेकिन वो वस्तुतः सभी उनके दास है, नित्य दास है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ममई वंश जीवो लोके जीवभूत सनातन, मेरे अंश है भगवान के अंश में कारण अंश होने कारण प्रत्येक जीवात्मा के धर्म है पूर्ण की सेवा करना, जो इसको स्वीकार करके ही भक्ति करता वो भगवान के द्वारा सदा सदा सुरक्षित रहता है, जो नहीं मानता तो अपना गुण से ही जाए नाश। लेकिन इसलिए उत्तम वैष्णव जो देखते हैं कि जीव मात्र हैं सभी को वैष्णव समझते हैं, है? चाहे वो भक्ति नहीं कर रहा लेकिन वो जानते कि सभी वैष्णव हैं, जब ये इनकी जन्मजात लक्षण है उनकी सृष्टि से, ये भगवान के अंश है। इसलिए भगवान जो उद्धार करते तो चाहे बाहर से हम दिखाई पड़ते कि किसको मार डाले और किसको है किसको रक्षा कर लिए, ऐसा नहीं, तो ये प्रसंग में हम देखेंगे भगवान जो उसको का उसको भी काटेंगे तो ग्राहक को काट दिए तो उसके अमंगल हुआ ना क्या, तो वो भी अपने स्तुति में आकर फिर हाथ जोड़ा है, जब तक शरीर में रहता तब व्यक्ति हम समझ नहीं पाते, शरीर जो कट जाता है तो फिर हमको हमारा स्थिति पता लगता है, फिर हाथ जोड़ते हैं। तो इसी प्रकार नल कुबेर भी चुप चाहे तो वृक्ष के रूप में खड़े थे, लेकिन जब भगवान ने उद्धार किया फिर उठ फिर अंदर से वृक्ष के अंदर से निकल गए, जब हाथ जोड़ फिर भगवान की स्तुति करने लगे। तो इसी प्रकार अज्ञानता के कारण तमगुण के कारण हम लोग भगवान की स्थिति को भूल जाते हैं साधारण दुनिया में लोग, लेकिन कोई मानता व नहीं मानता सभी भगवान कहीं अंश है, और भगवान सभी की कल्याण करते हैं, भगवान कोई किसी की अकल्याण नहीं कर सकते, किसी भी किसी का भी उनके कल्याण बा उनके मंगलमय स्वरूप है, जो भी करेंगे जीवों की कल्याण होगा, अमंगल कर ही नहीं सकते, उनसे अमंगल हो ही नहीं सकता, किसी को जान से मार डालने पर भी उसकी हित होता है, वो उस मुक्ति को प्राप्त कर लेता जो हजार हजार साल तपस्या करके भी जो मुनि ऋषि प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए मंगलमय स्वरूप है भगवान की। गजेंद्र ने इसलिए पूर्व जन्म की सुकृति के बल पर भगवान ने उनको अंतकरण से सहायक, भगवान जानते थे मेरे ही भजन करता था, मेरे ही ध्यान मेरे ही अर्चन करता था, इसीलिए उन्होंने अन्य मनस्क रहा था, उसको जान बुझ कर इनको ऐसे टाल नहीं दिया था, और विष्णु मुनि आए थे पता नहीं था, इतने तल्लीन थे भगवान की पूजा में ध्यान भगवान की अर्चन में, इसलिए उन्होंने उनकी अनुपस्थिति उनकी उपस्थिति को समझ नहीं पाए, तो इसलिए वो अभिशाप दिया, लेकिन भगवान नारद जी मेरा अर्चन करता था कैसे इसका गति ऐसे हो सकता है, यदि ऋषि के अभिशाप उनको प्राप्त हुआ लेकिन फिर भी वो गजेंद्र की जोनी में आ गए, लेकिन वो भगवान का स्मरण रहा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि यदि आप कैसे भी मुझे जन्म दीजिए, लेकिन मैं आपकी भक्ति का जैसे विस्मरण मुझे न हो। पशु पक्षी हुई था कि स्वर्गे वा निरहे, तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। हे प्रभु, मेरे कर्म के अनुसार जैसे भी निज 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 कर्म दोष गुणे जे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे जेन तब नाम गुण गाई। मेरे जन्म कर्म के आधार पर मैं जैसे मुझे जैसे चाहे अन्य पति अन्य जोनि में मेरे पतन हो जाए, मैं अन्य जोनि को प्राप्त कर ले, निम्न जोनि को, चाहे पशु पक्षी वृतासुर भी बन गए, जैसे बन गए चित्रकेतु महाराज। लेकिन भक्तों की एकमात्र ही प्रार्थना होता है कि जैसे मैं जन्म जन्मांतर आपकी गुणगान कर सकू, भक्ति जैसे मुझे इससे जैसे भूल न भूल जाऊं। भक्त को और कोई चिंता नहीं रहता, कोई पक्षी पशु पक्षी की जोनी में चला गया, राक्षस की जोनी में चला गया, हाथी की जोनी में चला गया, कहीं भी चला जाए, इसके लिए उनको भयभीत नहीं होते। यदि किसी भी शरीर में रहकर हम भगवान की भक्ति करने में समर्थ रहते हैं तो फिर हमारा जीवन धन्य हो जाता है। असली बात है कि हम क्या किसके लिए हमको भय रहता, जैसे भक्ति को हमें न भूल जाए, भगवान के चरण कमल को न भूल जाए, इसके लिए सदा हमारा स्मरण रखना, यही हमारा लक्ष्य है। स्मार्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातु ची सर्वविधि निषेधेषु हेतुरेव किंकर, सारा विधि निषेध शास्त्र की इसी के ऊपर निर्धारित है। सदा भगवान को स्मरण रखो, कभी उनको भूलना नहीं। तो गजेंद्र के अपने महाराज इंद्रदेव में यदि वो हाथी के जोनी में आ गए, लेकिन भगवान की कृपा से पूर्व जन्म की जो भगवान की भक्ति किए थे वो स्मरण आ गया, स्तुति जो याद किए थे, जो वह स्तुति जिन स्तुतियों में भगवान को हस्ती के रूप में रखने, जो महाराज इंद्रदेव के रूप में जो स्तुतियां गाते थे, अभी हस्ती के शरीर में आकर भी वही स्तुतियां गाने लगे, ये महान। इसलिए हम किसी जोनी में आ जाते तो अन्य पशु पक्षी की जोनी में आने पर भी भक्त को भी इसके लिए सोचता नहीं है। यदि किसी को गिद्ध के शरीर मिल गया, किसकी तरफ होगा, जटायु बन के, जटायु की तरफ यदि भक्ति किया राम के, तो उसमें क्या नुकसान है। तो जटायु को भी अंतिम सत्कार है, गिद्ध का अंतिम सत्कार कौन किया, रामचंद्र जी ने, भगवान ने स्वयं स्वस्थ में किया, इससे भाग्यवान व्यक्ति कौन आएगा। चाहे कुआ के शरीर कोये के शरीर में मिल गया, किसको काक भूसुण ली, दिन रात राम नाम रट रहे हैं, तो ऐसे कुआ को कोई आदर नहीं करता, लेकिन जो भगवान हरि भजन में लगा हुआ तो वो जीवन धन्य है। तो इस प्रकार हनुमान जी बंदर के शरीर में है, फिर भी महान भक्त भगवान भजन करते रहते। हम यदि मनुष्य का शरीर में रहकर भक्ति नहीं करेंगे, इंद्रिय तृप्ति में ही सारा जिंदगी लोग लगा देंगे, फिर हमारा जन्म श्रेष्ठ माना जाएगा। इसलिए भक्ति ठाकुर कहते हैं कि पशु पक्षी होई ठाके स्वर्गे वा निरहे, तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। चाहे पशु पक्षी की जोनी में कैसे भी जोनी में मुझे प्राप्त हो जाए मेरे जन्म कर्म के आधार पर, लेकिन हे प्रभु मुझे आपकी भक्ति जैसे मैं भूल न जाऊं, सदा से आपके चरण कमल को स्मरण रख सकूं, इतना ही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। आप कितनी बार मुझे जन्म दो, इसके लिए मैं दुखी नहीं हूं, लेकिन भक्तों की संगति से जैसे मैं वंचित न हो जाऊं। जन्मा हो यदि इच्छा अच्छी तो भक्त गृह जनी जन्म हो मर, इतना ही मेरी प्रार्थना है। जैसे मैं भक्त के घर जन्म हो जाए, बाकी किसी भी पशु पक्षी की जोनी में चले जाने पर भी मैं जैसे आपको न भूल जाऊं। इसीलिए महाराज इंद्रदिन पूर्व जन्म से भक्ति किए थे, इसीलिए इस जन्म में उन स्तुतियों को गार हाथी के शरीर में आने पर भी तो उनको स्मरण रहा भगवान की कृपा से। किसकी कृपा से स्मरण रख पाए, भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान भक्ति किए थे, भगवान इसलिए सहायता किए, भगवान भक्ति किए थे पूर्व जन्म में। इसलिए भक्ति की कभी नाश नहीं होता है, जो जितनी भक्ति किया है फिर वो अगले जन्म से फिर जहां छोड़ा था फिर वहीं से प्रारंभ करेगा, भक्ति नाश होने वाला नहीं है। ठीक है, कोई प्रश्न है,
बहुत धन्यवाद महाराज आपका। आपने बताया कि भगवान की कृपा से ही गजेंद्र को पूर्व जन्म की प्रार्थना याद आई, भगवान ने जब स्मरण कराया तो गजेंद्र ने स्पष्ट रूप से इंगित क्यों नहीं किया कि वो वासुदेव को पुकार रहे?
वो केवल स्तुतियों को रिपीट कर रहा था, जो स्तुति पढ़ रहा तो ये मंत्र दिया गया ना इसमें, ओम नमो भगवान वासुदेवाय,
वासुदेवा ने ओम नमो भगवते तक है उसका, ओम नमो भगवते बोल रहे हैं, वासुदेवा नहीं बोल रहे,
भगवते बोल रहा, लेकिन फिर भगवान समझ गए कौन है। स्तुति को तो दोहरा रहा था, जैसे स्तुति पिछले जन्म में गाया था उसी स्तुति को दोहरा रहा था, वो कोई स्पेकुलेशन नहीं किया इसमें, कुछ ऐड नहीं किया, ऐड असिस्ट करने, जैसे पूर्व जन्म में जैसे स्तुति गाया स्मरण किया था तो ऐसी स्तुति को दोहराया। लेकिन जैसे स्तुति कर रहा है कि जो समग्र ये भौतिक ब्रह्मांड कार्य कारण के साथ सब कुछ जो समाप्त हो जाता है, इसके परे जो परमेश्वर रहते हैं, तो इसलिए सब लोग कोई नहीं आ रहा, सब जानते थे कि तो इसलिए भगवान ही आए जो परमेश्वर इसके परे जो है। अवश्य ये स्तुति सेकेंडरी स्तुति माना जाता है, क्योंकि भगवान के नाम डायरेक्ट नहीं लिया, भगवान के नाम को जो कई प्रकार के भगवान के माने होता, कुछ मुख्य नाम होते हैं और कुछ गौण नाम होते हैं, तो भगवान को डायरेक्ट उद्देश्य नहीं करने न करने भी पर भगवान ही जानते थे पूर्व जन्म से मेरी महान भक्ति की थी, इसलिए भगवान ने आए, पूर्व जन्म से ही भक्ति किया था भगवान ने, इसलिए आए, और कोई नहीं है, सब देख रहे थे, अरे किसको पुकार रहा है, कोई बोल रहा है उसके पास, तो भगवान ने आए। इसी प्रकार हम यदि किसी व्यक्ति को मैंने इंगित नहीं किया, पार्टिकुलरली किसके नाम नहीं लिया, लेकिन जिस स्तुति में हम डायरेक्ट भगवान के नाम की उच्चारण करते हैं, गोविंद गोपाल मधुसूदन ऐसे पुकारते हैं भगवान के नाम लेकर, वो अधिक है। इसलिए भक्ति में ठाकुर कहते हैं कि गौण नाम मुख्य नाम गौण नाम है, सो कहे भगवान की जो लीला है, ब्रज की लीलाओं के साथ जी भगवान के नाम से संबंधित है, जसोदानंदन श्याम सुंदर गिरिधारी राधिका रमन, ये सब नाम भगवान बड़ा प्यारा है, जो कि आपके ब्रज की लीलाओं के साथ जिनके नाम को सब जुड़ा हुआ है, जो नाम है सही नीले ने क्या चैतन्य चैतन्य महाप्रभु भी ये नाम ठीक है, हम यदि इनको समझ रहे, लेकिन मायावती के साथ ब्रह्म चैतन्य आदि ऐसे ही कहते हैं, जो कि सोचते कि भगवान का भी नाम रूप गुण मिला ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गजेंद्र स्तुति कर रहा, हो सकता कि पूर्वजनों की हाथी ध्वनि में आने के कारण भगवान को उन्हें इसको ठीक से अभी ध्यान नहीं था, लेकिन जो स्तुति तो भगवान की कृपा से उसकी स्तुति याद आ गई, स्तुति गाते रहा तो भगवान ने फिर भी आ गए उसके सामने, भगवान को दर्शन करके फिर समझ गया भगवान कौन है। भगवत शब्द का अर्थ कि भगवान होता, लेकिन भगवान कौन है वो ना पार्टिकुलर नाम नहीं लिया ना, भगवान को समझता है विभु में भगवते ऐसे कहता है, लेकिन पार्टिकुलर नाम नहीं कहा, नाम उच्चारण नहीं किया, लेकिन भगवान ने समझ गया मेरी पूजा कर पूर्व जन्म से किया था, स्वल्पी क्षेत्र ने भक्ति किया था, इसलिए महान भय से भी भगवान ने इसको बचा लिए, इसके एक दृष्टांत ज्वलंत दृष्टांत है भगवान की। अल्टीमेटली सारे स्तुतियां किसके पास जाती है, कृष्ण के पास, भगवान कहते कि जो गीता में यदि भी अन्य अन्य स्तुति देवता को कुछ भी कोई भी कहता है, लेकिन अविधि पूर्वक वो मेरे पास आता है, वो विधि है सब मेरा ही स्तुति करता है, भजता अविधि पूर्वक, लेकिन फिर भी भगवान दयालु होते हैं, सब कुछ याद रखते हैं, कोई थोड़ा सा भी भक्ति किया आम भूल जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं भूलते। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसकी? क्लास समय पर समाप्त करना है तो
धन्यवाद महाराज जी लेक्चर के लिए। एक प्रश्न था, जैसे अगस्त मुनि जो है वो इतने मतलब महान ऋषि थे, हालांकि आपने बताया कि जब भी कोई ऋषि मुनि वैष्णव जब भी कोई श्राप देता है उसमें भी उनकी कृपा होती है और कहीं ना कहीं उनका उद्धार होता है जीव का, पर फिर भी जब उन्होंने वो श्राप दिया तब उनकी जो इंटेंशन थी वो उद्धार करने की नहीं थी, वो क्रोध की थी इंटेंशन, उनको क्रोध आया कि उन्होंने जो जो महाराज इंद्रद्युमन थे उन्होंने उनका सत्कार नहीं किया, जबकि इतने महान ऋषि होने के बावजूद जो है उनके मन में ऐसी भावना कैसे आ सकती है? उससे उनका फायदा जरूर हुआ, उस श्राप से उनको कृपा मिली, पर जब वो
शाप अगस्त मुनि जो क्रोधित होकर अभिशाप दिए ऐसा कुछ, जैसे नारद मुनि जो नल कुबेर को कहे नल कुबेर मणि मणि कुबेर का पुत्र कहे कि वृक्ष बन जा, तो ऐसे नहीं कि नारद मुनि क्रोधित होकर उन्होंने अभिशाप दिया, नहीं सोचे कैसे कल्याण होगा। तो इस प्रकार हस्त नगर अगस्त्य मुनि उस स्तर के भक्त नहीं थे जिस प्रकार जिस स्तर के कौन थे नारद मुनि, लेकिन वो क्रोधित थे कि नहीं थे इसका कोई पूरा वर्णन नहीं है। तो उन्होंने कहे ठीक है वो, लेकिन फिर भी उनकी हित हुआ। लेकिन अल्टीमेटली सभी कारण के कारण कौन है कृष्ण, माता पार्वती ने अभिशाप दे दी किसको है, जैसे वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव शंभू जी, शंकर जैसे वैष्णवी देवी में सर्वश्रेष्ठ वैष्णवी है कौन पार्वती, वैष्णवी देवी जाते सो कहा जामुन में हजार संख्या वैष्णवी देवी है, उनकी कृपा से महाप्रसाद खा रहे हो, उनकी कृपा इनकी कृपा से पार्वती की कृपा से, तो वो फिर कैसे कह दिए इनको महाराज चित्रकेतु को बोले कि जाओ राक्षस जोनि में चले जाओ। तो उसे भगवत इच्छा पीछे भगवान की इच्छा रहती, भगवान ने चाहते थे कि ये मेरा भक्ति किए थे पूर्व जन्म में इसका उद्धार जल्दी हो जाए, भगवान अपने भक्तों कैसे भी यदि थोड़े भी भक्ति किया इनको उद्धार करने का वो भूलते नहीं है, कैसे ना कैसे उनको फिर अपने पास में ले जाते। ठीक है
महाराज जी, तो इसका मतलब हुआ कि वो जो उनके जो इंस्पिरेशन मिली थी वो भगवान ने उनको इंस्पिरेशन दी थी शाप
के, भक्तों के साथ में जो कुछ घटना होता भगवान ही उसके कारण रहते हैं, जो कुछ थोड़े बहुत भक्ति किया इस जन्म में बा पूरे पहले जन्म में भगवान इसको फिर उद्धार करने की सोचते रहते, इसको कैसे उद्धार करना। ठीक है वो कारण अल्टीमेटली वही कारण है, वो सबको कारण बनते हैं। और कोई प्रश्न है, हमें किसकी कौन क्रोध किया क्या किया सो नहीं देखना है, और व्यक्ति का क्या अच्छा गुण देखो, अगस्त मुनि के पास में कई अच्छा गुण है, अगस्त मुनि के जब भगवान ने गिरिराज को उठा रहे थे, गिरिराज को उठाए तो पूरा वो जब पानी जो इतने इंद्र बारिश कर रहा था ऊपर तो सुदर्शन था गिरिराज के ऊपर, सुदर्शन के ऊपर पड़कर पानी तो बाष्प होकर चले जाते थे शायद बूंद गए, लेकिन कुछ पानी जो छिटक के इधर उधर आता तो वो पानी भी भगवान ने ऐसे परफेक्ट ड्रेनिंग सिस्टम किया था कि वो गोवर्धन के ऊपर तो एक धारा से एक ड्रेनिंग एक साथ जगह आकर सभी पानी एक जगह में गिरते थे बहुत मोटे धारा से, तो उसके नीचे भगवान ने इसको बैठा दिए थे, किनको अगस्त में नहीं बैठे थे, बैठकर क्या करते थे सारे पी जाते थे, तो भगवान के गला में ब्रजवासियों को रक्षण में सहायता की है ना, चाहे दुर्वासा क्रोधी है लेकिन फिर भी उन्होंने राधारानी को वरदान दी है, बरसाने में आए तो राधारानी खिलाई द्वादशी में इनको थोड़ा स्वीट राइस बना के वरदान दी, बेटी तू जो भी कुकिंग करेगा अमृत के समान बन गया है, तेरे कुकिंग कोई भी खाएगा उसके किसी प्रकार के रोग व्याधि उसके शरीर में नहीं होगा, तो वरदान बन गया कृष्ण के राधा कृष्ण में संपर्क स्थापन करने में, राधारानी तब से ब्रजवासी पता लगे अच्छा इसको वरदान तो कुकिंग में लगाओ डेली कृष्ण के लिए, तो इसलिए हम हमेशा बुरे साइड को मत देखो है, हमेशा पॉजिटिव साइड को देखो। ठीक है
हाँ धन्यवाद महाराज, मैं एक चीज जो पूछना था कि अक्सर हम भागवतम में पढ़ते हैं कि कई ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जैसे गजेंद्र के केस में महाराज चित्रकेतु के केस में कि बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में या बहुत कष्टदायक परिस्थिति में ऐसा जो दिखाई देता है कि व्यक्ति जो है वो भगवत धाम जाने का मौका मिलता है लेकिन जो आखिरी फेज होता है उसको जाने का बहुत उसके लिए बहुत पेनफुल है, बहुत उसके लिए कष्टदायक होता है,
ऐसे सब सब ऐसे आसान से नहीं होता ना, तो ऐसे जब होगा तभी तो स्मरण आएंगे भगवान है, कुत्ती मारने क्या बोल रहे हो, ज्यादा दुख दे दो हमको, दुख दो, दुख देने से स्मरण होगा, दुख नहीं आएंगे तो कैसे, आसान से स्मरण नहीं होते, दुख में सभी दुख में स्मरण करते हैं, सुख में स्मरण करना इतना आसान नहीं है, इसलिए दुख भगवान जानबूझकर ऐसे स्थिति में डाल देते फिर हम उनको पुकार देते हैं। ठीक है वो तो इतना कष्ट नहीं है, जैसे 10,000 बिच्छू काटेंगे मरने का समय वो ठीक है। और कोई प्रश्न है? हमारे चेतना के ऊपर दुख सुख निर्भर करता है। हमारे चेतना जब शरीर के साथ है हमें बहुत कष्ट अनुभव होगा, चेतना जब शरीर के परे हैं हरिदास ठाकुर की तरफ तो 22 बजे इतनी पिटाई करने से उनको कुछ कष्ट हो रहा था क्या? चेतना नहीं, उनको कुछ नहीं पता लगता था। हमको जब पिटाई करेगा कोई भाई ऐसा ही क्या होगा? सुख और दुख इस अपने चेतना के ऊपर निर्भर करता है। हमारा चेतना कहाँ पर है? शरीर के साथ हम अभी तक चेतना भी जोड़ के रखे तो हमको कष्ट लगेगा। जिसकी चेतना शरीर से बाहर है कृष्ण के चरणारविंद में लगा हुआ है उसको कष्ट नहीं होता है, है? महाप्रभु ने देखा है, महाप्रभु कैसे लड़ाई में हरिदास ठाकुर को देखो प्रहार कहाँ पड़ता था। इसलिए चेतना को शुद्ध, चेतना को शरीर से ऊपर उठाने के लिए प्रयास करो। ये सिंपल बात है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा। इतनी को अनुभव करना इतना आसान नहीं, कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं जो शरीर नहीं हूं आत्मा हूं उसको अनुभव करना, उसको प्रैक्टिकल करना है। तभी तो आप पहाड़ से कोई फेंक दिया प्रहलाद को फिर कुछ नहीं हुआ, उनको कुछ फर्क पड़ता था। जो इसको समझ गया सत्य को, मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, तो फिर उसको क्या लेना देना? चेतना पर उसके जब कृष्ण के चरण में लगा हुआ है कुछ नहीं होने वाला उसके, तो यही तो काम है। कृष्ण भावना अमृत संघ इसलिए बना गया, कृष्ण भावना में रहना, शरीर की भावना में नहीं। ओके हाँ, आप कौन कौन प्रश्न पूछ रहे थे जल्दी? हाँ वही तो आश्चर्य की बात है ना। युधिष्ठिर महाराज कहे कि इसलिए यही सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है, हम देखते हैं सुनते हैं करते हैं लेकिन फिर भी ये नहीं जाता है, फिर भी हम सोचते कि हम नहीं मरने वाले, मैं फिर जीवित रहूंगा। तो ऐसा ही इसको इसलिए सीरियसली साधु संघ में नित्य भागवत श्रवण, प्रत्येक दिन भागवत का श्रवण करना चाहिए। हर दिन जब इसको श्रवण करते रहेंगे साधु के मुख से, फिर आस्ते 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 ही अंदर में घुसेगा, ओवर नाइट घुसने वाला नहीं है, आस्ते 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 हम देखेंगे संसार, सुनेंगे इसको साधु लोग ने क्या कहा, मनुष्य जन्म लभिया राधा कृष्ण नाभ जिया जानिया सुनिया विष खाइनु हरि हरि विफले जन्म गुआइनु। आचार्य जी भजन को गाएंगे सुनेंगे फिर आस्ते 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 ये पहुंचेगा। कई जन्म से जो शुक्र कर करके सो आए हैं तो उसको इतना पड़ापड़ जाने वाला नहीं है। तो इसलिए नियमित नित्यम भागवत, नित्यम भागवत सेवा, दो प्रकार की भागवत, ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत, दोनों की सेवा करने से नष्ट प्रायेशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। तो नित्यम भागवत सेवा करने से, व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत की सेवा करने से फिर आस्ते आस्ते जाएंगे। तो इसलिए नारद मुनि कहते कि वैष्णव की सेवा करो, मैंने माँ के साथ वैष्णव की सेवा करके ही इस दिव्य पद को प्राप्त किया। कौन सा पद को? नारद मुनि की पद। तो ये तो शरीर के साथ चेतना होने के कारण तो गर्व अहंकार सब आ रहा है। बोले सोचो कि मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, तो उसको अनुभव करो है? क्योंकि हमारा क्या चेतना जब जुड़ा हुआ है, हमारा ममता किसे किससे जुड़ा हुआ? शरीर के साथ होने के कारण शरीर के साथ संबंधित इनके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा होना संपूर्ण है। कुंती महारानी कहती कि मैं ये पांडव को जो प्रेम करती हूं कि मेरे लड़का इसलिए प्रेम करता हूं, नहीं, यदि ये दुर्योधन की तरफ होते हैं इनका मुख भी मैं नहीं देखती हूं। यदि दुर्योधन की तरफ मेरे ये पांच पांडव होते हैं इनका मुख मैं कभी नहीं देखती हूं, क्योंकि ये भगवान के महान भक्त हैं, इसीलिए मेरे इनके प्रति प्रेम है। तो संसार में हमारा यही होना चाहिए, यदि कोई भक्ति नहीं कर रहा तो उसको हमारा सबको तो उसको ट्राई प्रयास करने के उसको भी भक्त बनाना, जो नहीं बन रहा उनके साथ हमारा संपर्क रखना कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए इसे ही भाव से जो संसार के प्रति आसक्ति घटाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा ना आस्ते आस्ते। मैं आत्मा नहीं हूं तो फिर समझू कि ये सब ऐसा ही है। कोई किसका बेटा तो आता है पूर्व जन्म में, वो तो अपना अभी मैंने किया प्रतिशोध लेने के लिए, पिछले जन्म उसका शत्रु होता था, इस जन्म में उसका प्रतिशोध लेने के लिए आकर उसका बेटा बनकर फिर उसको अपना परेशान करता है। तो इस शास्त्र पढ़ोगे तो देखोगे, हम समझ नहीं पाते ना। यही सब लोटने वाले हैं, घर के जो सदस्य यही असली भागवत कहते हैं असली लोटने लुटने वाले वही लोग हैं, हम समझ नहीं पा रहे। पैसा कमा के लेके आया और हमारे इष्टनी भक्त पहुंच गया कि जन्माष्टमी के लिए थोड़ा चांदा दे दो, तो बोला इसी के लिए कमाया, एक बार देखा पूरा भाई चलो बेकार के आदमी यहां से, और वही पैसा जब में रखकर पहुंच गया, पत्नी को पता है आज इसकी पेमेंट मिल गया है, और अब तो होते उस दिन तो मुस्कुराते हुए पूरे गेट तक आ जाएंगे, पॉकेट में हाथ डालकर पूरा बंडल निकल लिया, तब तो उसके मन में मुख में मुस्कान आ जाती है, देखो मुझे कितनी प्यार करती है, मुझे देना ही नहीं पड़ा सारे के सारे निकाल लिए, संसार है ना उसको समझ में नहीं आती लूट रही मुझे, सब लूट लेते ये सब लूटने वाले हैं। यदि वही डोनेशन कुछ मंदिर में दे दिया, भगवान कह रहे थोड़ा गीता पढ़ो सुनो समझो क्या, जत करोसी जदाश्नोसी जत जुहोसी ददासी जत जत तपस्वसी कौनते तत्कुरुष मदर पढ़ो, जो कुछ करते हो जो कुछ खाते हो जो उपहार के रूप में भी देते हो जो दान के रूप में भी देते हो जो तपस्या करते हो मुझे मेरे लिए करो, कोई देने वाला है सारे को सारे भगवान कहते जो भी दान देते हो उपहार देते हो मुझे दे दो, फिर तुम कर्मबंधन से छूट जाओगे, अध्यात्म बुद्धि से मुक्त हो जाओगे, ऐसे दोगे ना कर घर से भगवान को दे दो, घर से लुटकर भगवान को दे दिया तो बस घर से तो इसलिए हमें इसको प्रैक्टिकल निभाना चाहिए ना, जहां समझ रहे सब कृष्ण का है। ठीक है ओके, श्रील प्रभुपाद की श्री राधिका रमण की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, निताय गौर प्रेमानंदी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद।